आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
बृहस्पतिवार 1 जनवरी 2026 का दिन और SBS पर नव वर्ष के पहले हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को अनीता बरार की ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वरणजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, उम्मीद कर रही हूँ कि नव वर्ष की शुरुआत आप सभी की ठीक वैसी ही हुई होगी जैसी कि आपकी कल्पना में थी। दिल में भरोसा, कदमों में नई जान के साथ अपने अंदर की छुपी ताकत को पहचान कर नए सपने, नए उड़ान भरने के लिए आप सब तैयारी हैं। यानी जो बीत गया उसे अनुभव समझकर इस नव वर्ष का स्वागत एक नए अवसर के रूप में। और देखिए, मेरे लिए तो नव वर्ष की शुरुआत आपके साथ के साथ हो रही है, मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो बस एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आइए आपको बताते चलूं कि आज कार्यक्रम में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया भर के प्रवासी उद्यमी और बिजनेस ओनर से कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने सफर की शुरुआत कैसे की, क्या खोया, क्या पाया। आपके लिए है भारत से जाने माने लेखक कवि के द्वारा भेजी नववर्ष के संदेश के साथ एक कविता। और कार्यक्रम में आज मेरे साथ जानते हैं शामिल हो रहे हैं हमारे कुछ श्रोता भी, जो हम सब के साथ साझा करेंगे अपनी शुभकामनाएं और संदेश। और साथ साथ हम सुनते चलेंगे कुछ गाने भी। इस बीच में उम्मीद है कि आपके संदेश भी आते रहेंगे 0439-799-7677 पर। तो अभी आइए कार्यक्रम की शुरुआत में भारत के जाने माने कवि लेखक प्रखर दीक्षित द्वारा नव वर्ष की ये शुभकामनाएं, जिसे आपके लिए संगीत में ढालकर प्रस्तुत कर रही हूँ स्वयं मैं यानी अनीता बरार। नव जीवन की राह सुलभ हो, सोच नई व्यवधान बने, दृढ़ संकल्पित मार्ग सत्य का, जीवन निधि ईमान बने, जीवन निधि ईमान बने। मिले पेट भर रोटी सबको, तन ढकने को बसन मिले, आदर से उपकृत हो जन जन, समरसता का भाव खिले, वृथा छिद्र अन्वेषण करना, सदाचार प्रतिमान बने, जीवन निधि ईमान बने। संस्कार संग शिक्षा पनपे, ज्योतिर्मय उत्कर्ष रहे, रोग शोक पापों से दूरी मंगलमय नववर्ष रहे, खुशियों की कलिकाएं महके, जीवन पथ श्रुतिमान बने, जीवन निधि ईमान बने। द्वेष घृणा का मूल नाश हो, जन जन में विश्वास जगे, कृत कर्मों का भोग मिलेगा, सत्कर्मों में जीव लगे, आना जाना निश्चित व्यतिक्रम, काल के विषम वितान तने, जीवन निधि ईमान बने। नीर तरंता सी मानवता, जहां विनय मत साहस है, दानवता के भय मंडल पर विषम कराल अमावस है। अहंकार हो धूल धूसरित, बंधुत्व विश्व उपमान बने, जीवन निधि ईमान बने। बैर घृणा मद मत्सर के संग दोषों से दूरी रखना, क्षमाशील गुणवंत सत्यव्रत, परहित स्वाद प्रखर चखना। सभी हाथ को काम मिले संग, सत्संगति अभिमान बने, जीवन निधि ईमान बने। वृथा छिद्र अन्वेषण करना, सदाचार प्रतिमान बने, खुशियों की कलिकाएं महके, जीवन पथ श्रुतिमान बने। नवल प्रभात में नवल सोच संग, संकीर्तन हरिगान बने। अहंकार हो धूल धूसरित, बंधुत्व विश्व उपमान बने, जीवन निधि ईमान बने, जीवन निधि ईमान बने। इन आशामय विचारों के साथ, एक प्रेम सद्भाव के साथ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ ये गाना भी सुनते चले। SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुछ श्रोता भी शामिल हुए हैं अपने संदेशों के साथ, और कार्यक्रम के दौरान जो आपके संदेश आ रहे हैं उसकी बात आगे करूंगी। लेकिन अभी पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भर के प्रवासी उद्यमी और बिजनेस ओनर्स के। आइए उनसे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उनके सफर की शुरुआत कैसे हुई, क्या थे उनके शुरुआती संघर्ष और क्या सीखा उन्होंने अपने अनुभवों से। इस अंश को प्रस्तुत कर रही हैं इति दीवान।
ये सारा हार्ड वर्क, ये सारा स्ट्रगल टेम्पररी है। तुमने जितना भी हार्ड वर्क करा वो जरूर सफल आएगा।
अगर तुम टिके रहोगे तो मैली का यह समंदर, इस देश का यह समंदर धीरे धीरे तुम्हें अपना बना जरूर लेगा।
अगर मैं उस वक्त अपने आप को एडवाइस दे पाती और ये कहती गाइडेंस लेना जरूरी है।
शुरू में ऐसे उनकी जो फास्ट इंग्लिश बात करते थे, मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता था।
कभी सोचा है अगर आज के आप वक्त में थोड़ा सा पीछे जाकर अपने उस वर्जन से बात कर पाते जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे या पहुंची थी। बस यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कुछ प्रवासी व्यवसायियों से, जिन्होंने शुरुआत की जीरो से और आज सफलतापूर्वक अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। आइए सुनते हैं 32 साल की आयुषी दीक्षित को, जो बहुत छोटी उम्र में मेलबर्न में एक डिजाइनर कपड़ों का स्टोर पारो चलाती हैं।
जब मैं 18 साल की उम्र में यहाँ पहली बार अकेली आई तो दिल में बहुत डर था, पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी था। यहाँ के लोगों का रहना सहना, तौर तरीका, खाना पीना देखकर एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा, पर बड़ा मजा भी आया। आज भी मुझे याद है, मैं 20 साल की थी और डबल शिफ्ट्स करके मैकडॉनल्ड्स के चेंज रूम में एक वुडन बेंच पे सो रही थी, रात गुजार रही थी, क्योंकि सुबह वापस 6 बजे शिफ्ट स्टार्ट करनी थी। 1 बजे की बात है ये, कुछ रात के। एंड अगर आज मैं उस छोटी बच्ची को उस वुडन बेंच पे सोते हुए देखूं और कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगी कि तुम सही थी। ये सारा हार्ड वर्क, ये सारा स्ट्रगल टेम्पररी है। तुमने जितना भी हार्ड वर्क करा वो जरूर सफल आएगा, और तुम सही थी।
वहीं जावेद खान, जो आज सिडनी में डेली और डेली नाम का एक भारतीय रेस्टोरेंट चलाते हैं, समंदर की लहरों की तरह बाहर से खुद को शांत और सुंदर पाते थे, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी तन्हाई में चुपचाप करवटे बदल रहे थे।
जब मैं साल 2000 में भारत से ऑस्ट्रेलिया आया, तो मैनली में एक रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पे काम शुरू किया था। समुद्र खुला, आसमान और शांत बीच, बाहर से सब कुछ बहुत सुंदर और सुकून देने वाला एटमॉस्फेयर मिला मुझे, लेकिन अंदर से सब कुछ बिल्कुल नया और अनजाना था। समुद्र के पास रहते हुए भी एक अजीब सी अकेलापन था। भारत की भीड़ और अपनापन अचानक गायब हो गया। यहाँ लोग विनम्र थे, मुस्कुराते थे, लेकिन दूरी बनाए रखते थे। नो वरीज सुनकर काफी अच्छा लगता था, बट रिश्ते, ये समझ में आया मुझे कि रिश्ते बनने में वक्त लगेगा यहाँ पे।
वो कहते हैं कि दोस्तों के साथ चाय कॉफी पर यूं ही बैठकर वक्त बिताने वाले वो लम्हे उन्हें बहुत याद आते थे।
इंडिया में हमें बड़ा आसान होता था दोस्त या अपने किसी को अपनापन जाहिर करने के लिए हम चाय पे कहीं भी किसी भी नुक्कड़ पे बैठ जाते थे, बट यहाँ पे टोटली अलग था, अलग तरीका है। लोग जनरली यहाँ पे बियर और पबों में मिलते हैं, उनके लिए ये कल्चरल चीज है। बट मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी बियर और पबों में बैठ के उनके कल्चर पे उतर जाएं। अपने जड़ों से हमेशा जुड़े रहें और अपनी अपनी सभ्यता को काफी प्राउडली अप्रिशिएट करें और उसे जाहिर जरूर करें।
अपने पहले साल वाले जावेद को वो सलाह देंगे कि सब्र बनाए रखें और ऑस्ट्रेलिया की विंटर्स की तैयारी कर ले।
आज मैं अपने उस पहले साल वाले जावेद से यह जरूर कहूंगा, धैर्य रखें। अगर तुम टिके रहोगे तो मैनली का यह समंदर, इस देश का यह समंदर धीरे धीरे तुम्हें अपना बना जरूर लेगा। आते वक्त डेफिनेटली एक अच्छी सी जैकेट सर्दी में बचने के लिए जरूर ले आना, क्योंकि जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था तो कैलकटा होते हुए आया था, बिकॉज कैलकटा उन दिनों मैं 4 साल रहा हूँ आने से पहले, तो वो एक मिस किया मैंने और रियलाइज किया कि नहीं, एक अच्छी जैकेट जो आपको सर्दियों से बचाए, आपको सर्दियों में कंफर्ट दे, बहुत ही जरूरी है।
निशा बजाज आज स्प्लेंडर होम्स नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन है। वह याद करती हैं वो दौर जब पुरुष प्रधान दुनिया में हर कदम सवालों और संघर्षों से भरा था, जहां अपनी काबिलियत बार बार साबित करनी पड़ी और अपनी आवाज को सुने जाने के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ा।
जब मैं स्टूडेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया आई तो सब कुछ नया था, पढ़ाई, कल्चर, लैंग्वेज और काम करने का तरीका। उस वक्त मेरे पास सही करियर गाइडेंस नहीं थी, इसलिए मैं अपनी स्टडीज को अपने लॉन्ग टर्म करियर पाथ के साथ ठीक से अलाइन नहीं कर पाई। अगर मुझे उस वक्त सिस्टम और ऑप्शंस का बेहतर समझ होता तो शायद काफ़ी चीज़ें लाइफ में अलग होती। बाद में जब मैंने अपना खुद बिजनेस स्टार्ट किया, स्प्लेंडर होम्स, तो चैलेंजेस और भी गहरे हो गए। एक तरफ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, स्टीरियोटाइप्स और क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का प्रेशर, दूसरी तरफ कल्चरल डिफरेंस, हम जहाँ से आते हैं वहाँ नो कहना अच्छा नहीं माना जाता, लोगों की बातों पर भरोसा किया जाता है और हम ज़्यादा पोलाइट रहकर बाउंड्रीज बनाना भूल जाते हैं। मैं शब्दों पर शायद ज़्यादा विश्वास करती रही, असर्टिव नहीं हो पाई और सिस्टम को समझने में वक्त लगा। इसकी मुझे इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों ही तरह से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगर मैं उस वक्त अपने आप को एडवाइस दे पाती और ये कहती गाइडेंस लेना ज़रूरी है और अडाप्ट करना मतलब अपनी वैल्यूज खोना नहीं, बल्कि उन्हें स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रोटेक्ट करना है।
शुरुआती दिनों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्किंग का डर, बोलने में हिचकिचाहट, ऑस्ट्रेलियन कल्चर को समझने की कोशिश और हर रोज खुद से पूछा गया एक ही सवाल, क्या मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। सुदर्शन गुर्मा मेलबर्न में अपनी ब्लाइंड्स और शटर कंपनी जीके ब्लाइंड्स चलाते हैं। वो याद करते हैं कि शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई शब्दों को संक्षिप्त रूप से सुनकर समझना और सीखना उनके लिए कितना समय लेने वाला था और चुनौतीपूर्ण भी रहा।
जैसे शुरुआत में जिस इसी फील्ड में काम करने का मौका मिला और जब यहाँ पे जैसे ऑजियो के साथ काम करना था तो फैक्ट्रीज में जाता, वहाँ पे जाते ही शुरू में ऐसे उनकी जो फास्ट इंग्लिश बात करते थे मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मैं जैसे शॉर्टकट में बात करते हैं यहाँ पे ना, हाई माइट, स्मोक ओ टाइम, गुड डे, ये जैसे छोटे छोटे वर्ड्स मेरे को पहले पता ही नहीं थे, बाद में धीरे धीरे सब उन लोगों के साथ काम कर करके सीखा। कुछ कुछ दिन लग गए, बट इट्स सो इजी, वेरी नाइस पीपल, सब समझाते भी थे, उन लोगों के साथ अच्छे से रहने के काम करने का मौका मिला। तो बाद में जैसे अपने लोग भी यहाँ पे मल्टीकल्चरल लोग हैं यहाँ पे रहने का, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हूँ, तो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, जो मुझे कुछ लैंग्वेजेस आते हैं, तो उन लोगों के साथ बिजनेस करने का भी मौका मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं हर कस्टमर के घर जाता हूँ, कभी ऑजीज, आज मैं उनकी लैंग्वेज में उनके साथ बात करता हूँ।
रिधिमा सचदेवा मेलबर्न में एक कैफे चाय शाय चलाती हैं। शुरुआती दिनों में वो ऑस्ट्रेलियाई लहजे को समझने में तकलीफ महसूस करती थी। हर बातचीत एक पहेली सी लगती थी और हर शब्द में नया अनुभव छुपा था।
मैंने सबसे पहले आकर यहाँ पर, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो एक डिज़ाइनर हेडबैंड्स का काम शुरू किया था। और मुझे याद है मॉर्निंगटन पेनिनसुला में मैंने एक फेयर लगाया था और एक पासर बाय मुझसे आके पूछते हैं, गुड डे मेट, वेयर इज़ द डनी? और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे समझ नहीं आया कि डनी क्या होता है। मैंने हंस के सॉरी दो बारी बोल कर बोल दिया, सॉरी मुझे नहीं पता। ऐसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स की बातें और भी हुई थी। मैं, हमारा जो चाय कैफ़े है फिट्सरॉय में, हम बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से चाय बनाते हैं वहाँ पर, सारे मसालों को कूट कर। तो मैं ये बात किसी को बता रही थी तो उन्होंने आगे से बोला, फेयर डिंकन। एंड मुझे नहीं समझ आया फेयर डिंकन का मतलब, बट हंस कर बस इग्नोर कर दिया कि यू नो, ये कह कर कि हाँ समझ आ गया इन अ वे। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब काम शुरू किया तो समझ आया कि परमिट्स कितने ज़रूरी हैं, पेपर वर्क कितना ज़रूरी है, लॉज ऑन टैक्सेस की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। हमें लगता था कोई भी परमिट को 2 से 3 2 से 3 महीने में आ जाएगा, बट परमिट्स का वेट करते करते बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 6 to 9 months लगते थे कभी परमिट्स को आने में।
छोटी रिदिमा को वो सलाह देंगी,
पैशन के भरोसे बिजनेस मत शुरू करो। पैशन से सिर्फ चाय बनती है, बट लॉज, परमिट्स और बिजनेस चलाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉज, द टैक्स सिस्टम्स एंड द परमिट्स। बट विद टाइम, हाँ, एक्सेंट भी समझ आ गया और पेशेंस भी आ गई और लॉज भी समझ लिए और परमिट्स भी समझ लिए। इट्स प्रोसेस था, बट सब कुछ अच्छे से और टाइम लगा के सीखा। तो आज इट्स बिन 6 years और अब सब समझ आ गया और सब कुछ ठीक चल रहा है।
तो ये थी कुछ आवाजें माइग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स की। SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया इस अंश को इति दीवान ने।
मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अनुभवों से आप भी प्रोत्साहित हुए होंगे और भविष्य डर नहीं, अवसर लगना चाहिए, ऐसा आपने भी सोच लिया होगा और आपके सपने बोझ नहीं, प्रेरणा बनेंगे। अपनी बात हमसे साझा करते रहिए 04397197667 पर। और हाँ, आज भी आप फिल्म राजा साहब के डबल पासेस जीत सकते हैं। बस आपने हमें अपने संदेश भेजकर बताना है कि संजय दत्त की पहली फिल्म कौन सी थी एज एन एक्टर, 04397197667 पर। और आगे कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाऊंगी कश्मीरी सिंगर्स के साथ में और कुछ बात करेंगे बेमिसाल मिसाल की। इसके अलावा आपकी शुभकामनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं, तो बस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद। SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार।
आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कश्मीर घाटी में गूंज रहे इस संगीत के गायकों के साथ। युवा इरफान नबी और बिलाल माता बचपन के दोस्त हैं। संगीत की तरफ रुझान भी एक सा। दोनों ने ही 10 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा ली। और उधर महमीत ने कश्मीर में एक अलग ही बदलाव लाया, अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लिया और कश्मीरी संगीत को पुनर्जीवित किया। उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए भी नामांकित किया गया और एक अवसर पर राष्ट्रपति कलाम साहब ने स्वयं एक सम्मान पत्र दिया। ये तीनों ही गायक अपने अपने तरीके से कश्मीर घाटी के संगीत को नई पहचान दे रहे हैं। तो आइए आज कुछ बातें उन्हीं के साथ।
नमस्कार, थैंक यू आदा।
महमीद, इरफान और बिलाल जी, आप बचपन से ही संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन महमीद जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपना पहला कॉन्सर्ट किया था जब आप सिर्फ 6 साल की थी, तो आपको अपना वो पहला कॉन्सर्ट याद है?
हल्का हल्का तो बिल्कुल याद है, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो इससे जो याद बिल्कुल ताजा है मेरी आंखों में। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाया और परफॉर्म किया, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली। और बहुत छोटी थी मैं, और जब लोग सराहते हैं तो खुशी तो होती है। और टीचर्स, मेरे सारे जो मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग ने इतना पसंद किया, एंड दे वर लाइक यू डोंट साउंड लाइक अ किड,
अच्छा
प्रोफेशनल सिंगर। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आई हैव स्कोप ऑफ डूइंग बेटर एंड आई रियली डिड बेटर।
जी, और इरफान और बिलाल जी, आप दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और संगीत का शौक भी दोस्ती का हिस्सा रहा है। शुरुआत तो आपने की हिंदी और पंजाबी गानों के साथ में, और उन्हें आपने कंपोज भी किया, और अब आपका रुझान हुआ है कश्मीरी भाषा में सूफी संगीत, और शुद्ध सूफी भी नहीं बल्कि फ्यूजन सूफी। तो ये बदलाव कैसे आया और फ्यूजन क्यों?
एक्चुअली जब हम पहले अमृतसर में थे, हमने पंजाबी सूफी गाया ज्यादा वहाँ पे, तो सूफी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन हो गया हमारा। तो उसके बाद जब हम वापस आए यहाँ कश्मीर, तो हमने अपना लिटरेचर पढ़ा कश्मीरी, हमने अपना यहाँ कश्मीरी सूफी जिन देखा, तो उसके साथ चलते टाइम टू टाइम फिर हम आगे आगे बढ़ते गए, तो फिर इसी में पूरा इसी के अंदर ही गए हम। तो तब से लेकर अभी तक हम इसी के साथ है, बस अब बस पूरी लाइफ यही चलेगा हमारा।
क्या बात है। और आप लोग तो गहरे दोस्त हैं, तो एक बात बताइए कि जब आप कोई धुन बनाते हैं उस समय कभी दोस्ती आरे आ जाती है? मतलब कभी विचार तो अलग हो ही जाते होंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है इसको।
वैसे तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता,
कुछ कभी भी छोटी मोटी भी नहीं,
बिल्कुल छोटी मोटी नहीं, बस ऊपर वाले ने पता नहीं जैसा बना दिया ऊपर वाले ने। मैं कुछ सोचता हूँ इरफान भी वही बोलता है, बात
क्या बात है,
अगर सुनता है तो मैं भी वही बोलता हूँ, ऊपर वाले का कर्म है।
क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी, मतलब दोस्ती की भी मिसाल और संगीत की एक अलग मिसाल हैं आप लोग।
थैंक यू सो मच।
और महमीद जी, आपके लिए तो कह सकते हैं कि आपने एक तरह से एक इतिहास रच डाला, क्योंकि आप कश्मीर की पहली गायिका रहीं जिन्होंने 2005 में अपना पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज किया। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि कश्मीर घाटी का वो दौर तो तनावपूर्ण था, तो क्या कभी आपको लगा कि जो आप करना चाह रही हैं वो शायद हो नहीं पाएगा या बहुत मुश्किल काम है? और क्या कभी ऐसा लगा कि बस अब और नहीं, क्योंकि माहौल तो तनावपूर्ण था ही?
जी बिल्कुल, तो ऐसा है कि जब मेरा एल्बम रिलीज हुआ
जी,
उस टाइम म्यूजिक कश्मीरी म्यूजिक से हमारा यूथ बिल्कुल इन टच नहीं था, उतना क्लोज नहीं था अपने म्यूजिक के। विद द टाइम मेरे एल्बम रिलीज होने के बाद एक ओवरनाइट वेव जैसी आ गई, एंड देन पीपल रियलाइज्ड दैट मैं कश्मीरी भी सुन सकते हैं। ऑब्वियसली विद टाइम वो काफी उस टाइम माहौल तनावपूर्ण था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया दैट आई हैड नेवर टू फेस एनी कंट्रोवर्सी, आई हैड नेवर टू फेस एनी, यू नो, दे काइंड ऑफ शील्डेड मी ऑलवेज।
अच्छा, तो यूं कह सकते हैं कि आपको जो परिवार की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से या आपके पूरे आसपास लोगों ने जो आपको सपोर्ट किया, उससे उस समय जो सोचने में जो काम मुश्किल लगा वो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए।
बिल्कुल सही।
और आपको तो खूब सफलता मिली और आप वहाँ की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गई हैं, तो आप तो उनका आदर्श हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपका आदर्श कौन है?
मेरे आदर्श मेरी सबसे पहले मेरी मामा है
जी,
बिकॉज वो भी म्यूजिक ग्रेजुएट रही हैं, और
अच्छा,
उनकी ही वजह से अगर मेरे ब्लड में म्यूजिक है और अगर मैं गाती हूँ तो बस उन्हीं की वजह से है, बिकॉज म्यूजिक स्टार्ट ही मेरा उन्हीं की वजह से हुआ। शी इज टू, यू नो,
जी।
और इरफान और बिलाल जी, आपके आदर्श कौन हैं? आपको किससे प्रोत्साहन मिलता है?
हम तो एक दूसरे को ही जी के सब कुछ एक दूसरे को ही देख के करते हैं।
अच्छा जी।
तो हमारा फैमिली बिल्कुल बैकग्राउंड कोई म्यूजिक का कोई इसके साथ रिलेट नहीं था। वो बाद में जब आस्ते आस्ते हमने म्यूजिक स्टार्ट किया, पहले बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो फाइनली जब लगा सबको कि नहीं ये बेचारे आगे जा रहे और म्यूजिक में कुछ कमाल कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट सपोर्ट किया अच्छा खासा। फिलहाल तो म्यूजिक में हम एक दूसरे के लिए करते थे, पहले बिलाल मेरे लिए कर रहा था, मैं बिलाल के लिए कर रहा था।
कोई ऐसे आइडियल जिनका संगीत आपको इंस्पायर करता हो?
जी एक्चुअली क्या है ना कि सूफी म्यूजिक जो ट्रेडिशनल म्यूजिक फोक म्यूजिक होता है, ये एक्चुअली जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ये सारा फोक म्यूजिक की वजह से, बिकॉज फोक ही ग्राउंड होता है
जी।
तो हम लोग ने सूफी म्यूजिक को चुना है। सूफी म्यूजिक में बड़े बड़े गुणी लोगों ने मतलब गाया है, सूफी म्यूजिक के साथ किया है। तो उसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद आते हैं, जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब शाम चुरसिया घराने के, या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब पटियाले घराने के। तो उनको देख देख के उनका सुन सुन के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वरना हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि हम लोग गुनी लोगों के साथ बैठे।
जो बिलाल ने बोला सेम वही मुझे भी लागू होता है, क्योंकि हमने अक्सर इन्हीं बड़े लोगों को ये इनका फॉलो किया है हमेशा
जी।
और अपनी किस्मत खुशकिस्मती समझते हैं कि हम उसी को फॉलो करते हैं
जी। महमीद, इरफान और बिलाल जी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके समय का धन्यवाद देती हूँ मैं।
थैंक यू सो मच।
आशा कर रही हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। और आइए अब बात भारत कानपुर की। कानपुर में एक अनोखा स्कूल है, इसे स्थापित किया एक बेरोजगार युवक ने। इस स्कूल का नाम है गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल। इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में।
सोचिए 21-22 साल की उम्र में क्या क्या सपने होते हैं। कैरियर स्थापित करना, पैसे कमाना, जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित करना। लेकिन कानपुर के उद्देश्य सचान ने कुछ और ही सोचा। इस उम्र में जब उनके साथ के लोग अपने कैरियर और आगे की जिंदगी को सेटल करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की सोची। अच्छी सोच है, लेकिन ये उन्होंने तब किया जब वो खुद बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे थे। स्वयं भी आर्थिक रूप से कमजोर, कोई नौकरी नहीं, घर परिवार सभी की जिम्मेदारी, ऐसे में कौन दूसरे के बारे में सोचता है। लेकिन उद्देश्य सचान ने एक स्कूल खोलने की सोची ही नहीं बल्कि उसको कर दिखाया। एक ऐसा स्कूल जिसे गुरुकुलम खुशियों का स्कूल कहा जाता है, जहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है, जहां पर शिक्षक सख्त नहीं वरन आपके दोस्त हैं, जहां पर बच्चे खुलकर आपसे बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्देश्य सचान ने इस स्कूल से पैसा कमा लिया है, आज भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन खुद की परेशानी के अलावा वो इस स्कूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्देश्य ने अपने इस विशेष स्कूल, जहां उनके अनुसार इंसान बनाए जाते हैं, खुशियां बांटी जाती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया।
जी पहले तो नमस्कार, मेरा नाम उद्देश्य प्रधान है, कानपुर यूपी में गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल नाम का स्कूल चला रहा हूँ। स्कूल में यह है कि आसपास के स्लम बस्ती से और गाँव से 150 के आसपास बच्चे आते हैं। इन बच्चों को स्कूल में मोरल वैल्यूज और स्किल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग करा रहा हूँ। और इसका यह है कि आइडिया इस तरह से आया कि एक लंबी कहानी है तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जब जॉब के लिए आप कहीं जाते हैं और जॉब नहीं मिलती है, देन स्किल्स की बड़ी नीड पड़ती है आजकल। बिना स्किल्स के जॉब मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो कई जगह अप्लाई किया, जॉब नहीं मिली, और मैंने पाया क्या कि एक अलग सा खालीपन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ के लिए कई सारी समस्याएं हो रही हैं। और फिर एक फैक्ट्री में काम किया, आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया, देन रियलाइज हुआ कि यार क्या मेरे साथ हो रहा है या बाकी सबके साथ भी हो रहा है, तो समझ में आया नहीं ये तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसे करोड़ों उद्देश्य इस इंडिया में हमारे देश में है जो परेशान घूम रहे हैं जॉब के लिए और मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं। तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करते हैं जिसे चेंज ला सकें, और चेंज के लिए बस प्लान किया एक ऐसा स्कूल जो हमें जीना सिखा दे, खुशी वाला स्कूल। तो गुरुकुलम खुशी वाले स्कूल की स्थापना कर दी।
गुरुकुलम स्कूल वाकई जैसे बच्चों के लिए बना है। وہ بچے جو شاید کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، کچھ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک یہ اسکول کھلا رہتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ضروری اسکلس بھی سیکھتے ہیں، انہیں صرف پڑھنا نہیں، خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب بالکل نشلک ہوتا ہے۔
اچھا ہے کیا، پہلی بات تو جب شروعات کی تھی تو ایک مڈل کلاس پرسن ہونے کے کارن ایک اسکول کھول پانا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، بہت بڑا ٹاسک۔ آپ ایک ساتھ 30-40 لاکھ روپے نہیں لا سکتے ہیں۔ پتا جی ہمارے ٹیلر ہیں، ممی ہاؤس وائف ہیں، تو وہ تھا نا کہ 7-8 ہزار میں گھر چلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو پلان یہ تھا کہ چینج لانا ہے، بٹ کیسے لائیں اور اسکول کھولیں تو کیسے کھولیں۔ میرے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں تھا، بنا کسی اماؤنٹ کے ایک میں نے جوڑ جاڑ ایک جگہ سے بورڈ مانگا اور ایک مارکر لیا اور ایک لوگوں سے کرایہ کی جگہ مانگی، اسٹارٹ کیا تو 5 بچے آئے اور میں نے فری اسٹارٹ کیا۔ تو 10th اور 9th کے بچے بلائے پہلے میں نے، تو بڑے بچے جب آئے پھر میں نے سلمس میں جا کے بچے اکٹھا کیے، سلمس کے بچے آ گئے اور اکٹھے کرتے کرتے ایک جب پڑھانے اسٹارٹ کیا تو میں بچوں سے کنیکٹ کیا، تو بچوں کو ہندی انگلش تو اکیڈمکس تو ساتھ ہی ساتھ اسکلس سے بڑا کام کیا، بچوں کو ڈانس، میوزک اور تھیٹر، سیکس، کوئی بھی ٹاپک میں نے چھوڑا نہیں، پیریڈ، مینسٹریشن، کوئی بھی ٹاپک نہیں جس سے بچوں کا گیان کم نہ ہو، جیون کے بارے میں اویئرنیس اور وہ گیان جو ان کو جیون میں اپیوگی ہو اس پر بہت ہی زیادہ فوکس کیا۔ اور وہ بچے جب میں بچوں کے دل سے جڑا، ہوتا ہے کہ 13 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے بھی فیلنگس اور ایموشنز ہوتے ہیں، اور ہمارے اسکول ان کو اگنور کر دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ وہ بکس پر، تو وہ ہم کہیں نہ کہیں مات کھا جاتے ہیں۔ تو بچوں کی میں نے فیلنگس اور ایموشنس پر بھی کام کیا، ان سے باتیں کی، ان سے جڑا، پھر کنیکٹیوٹی بڑھی۔ تو ہوتا ہے نا بچوں میں وہاں چلو وہاں اچھا پڑھاتے ہیں، کرتے کرتے خوب بھیڑ آنے لگی بچوں کی۔ ہاں سلمس میں تھوڑے مشکلات ہوتے ہیں گارجین سے بات کرنے میں، ان کو بچوں کو لے کر آنے میں تھوڑا روکتے ٹوکتے ہیں، بٹ پھر بھی ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو بھیجنے لگے۔ تو ہم بچوں کو اسکول میں پراپر اکیڈمکس کے ساتھ اسکلس پر بہت ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں۔
دقتیں آئیں، انہیں دوسروں سے آرتھک مدد کے لیے کہنا پڑا، بچوں کے ماتا پتا کو سمجھا کر ان کو اسکول بھیجنے پر تیار کرنا پڑا۔
ایک بہت بڑا ڈیزل لے کر کام کر رہا ہوں میں، آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے۔
سچ ہے کبھی سنسادھنوں کی کمی کا رونا رو کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، ضرورت ہے اچھا شکتی، درڑ نشچے اور لگن کی، حالات اور راستے سوئم بنتے جاتے ہیں۔ لکھنؤ سے فیصل فرید۔
تو آپ سن رہے تھے فیصل فرید کی یہ رپورٹ، یعنی جیون میں ایسے بدلاؤ لانے چاہیے جو آپ کو بھیتر سے خوش کر دے اور خود پر گرو کرنے کا ایک نیا کارن بنے، خوشیوں کی قدر سکھائے، آپ کی سوچ میں گہرائی آئے اور منزل بھی سارتھک ہو، کیونکہ اصلی خوشی وہی ہوتی ہے۔ اور شروتاؤں، اب سمے ہوا ہے ایک انترال کا۔
SBS ہندی ہر سمے اپلبدھ ہے، جب بھی آپ چاہیں کسی بھی موبائل پر ہمارے پوڈ کاسٹ بالکل مفت سنیں۔ sbs.com.au/hindi پر جائیں یا SBS آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
SBS پر آپ سن رہے ہیں ہندی کارکرم اور آپ کے ساتھ ہوں میں انیتا برار۔ شروتاؤں، سال کا پہلا دن ہے اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہر دن پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور جب نئے سال کی بات ہوتی ہے تو ہماری آشائیں، ہمارا اتساہ کچھ الگ ہی استر پر ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے پرتی منگل کامناؤں کے ساتھ ہم نئے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کارکرم کی شروعات میں بتایا، ہمارے ساتھ آج کارکرم میں جڑے ہیں ہمارے کچھ شروتا جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے لائے ہیں اپنے شبھ سندیش۔ تو آئیے کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایس پی ایس پر میں ہوں انیتا برار۔ نو ورش پر دی جانے والی شبھ کامنائیں اپنوں کے پرتی پریم، سدبھاؤ اور منگل کامناؤں کو ویکت کرتی ہیں، اور یہ بھاونائیں ہم سے ساجھا کی ہیں ہمارے کچھ شروتاؤں نے۔
آپ سبھی کو بہت ہی ہیپی، پراسپیرس اور مینٹلی ہیلدی نیو ایئر۔ میں نیو ایئر پہ یہ میسج دینا چاہوں گا سبھی کو کہ ہم سبھی مائگرینٹس کے لیے جتنا فزیکل ہیلتھ ضروری ہے، اتنا مینٹل ہیلتھ لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور ہمارے پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بیکاز وی آر دا رول ماڈل فار دیم۔ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, आई थिंक घर से ही शुरुआत करना चाहिए। बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन से करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले ताकि ट्रस्ट उनसे बना रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ का रेजोल्यूशन भी करें।
क्लाइड मेलबर्न से मैं ब्रजेश सावलिया, SBS की सभी भाषा की पूरी टीम को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और सक्सेस लेकर आए। वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सोच के साथ हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ आगे बढ़ते रहे। सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड मेक दिस ईयर ट्रूली मीनिंगफुल।
अलका किस्ती का नमस्कार के साथ सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी मिलजुल कर अपने सदकर्मों से परिवार सहित अपना, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का नाम ऊंचा करें। मिलजुल कर खूब तन मन धन से काम करें, यही कामना है।
मैं पुनीत शर्मा क्रेगिबन मेलबर्न से इस नए साल के शुभ अवसर पर SBS टीम को और उनके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता। नया साल एक नई सुबह, नई उम्मीदें और नई रोशनी लेकर आया है। पिछले साल की थकान और कड़वाहटों को पीछे छोड़कर आइए दिल में अच्छाई, शब्दों में मधुरता और कर्मों में सच्चाई भरें। आज जब दुनिया तनाव और नफरत के दौर से गुजर रही है तो एक शायर की लिखी दो लाइनें याद आ रही हैं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आइए इसी मोहब्बत, शांति और मुस्कान के साथ आने वाला साल हम सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। ईश्वर से हाथ जोड़कर यही कामना करता हूँ।
सिडनी से जय शाह का प्यार भरा नमस्कार। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी SBS के लिसनर्स को नए साल की हार्दिक बधाइयां देता हूँ, और नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेके आए और सबकी इच्छाएं परिपूर्ण हो, ऐसी शुभेच्छा पाठता हूँ। तथा प्रभु से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और पिछले दिनों होंडाई में जो हादसा हुआ ऐसा दोबारा कभी न हो।
मैं नेहा केन, नमस्कार सबको और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस इसी एक शुभकामना के लिए कि जैसा वर्ल्ड में चल रहा है तो इस समय पीसफुल रहे, यही मेरी शुभकामना है।
सभी श्रोताओं को सिडनी से चेतन शाह का नमस्कार। 2025 पर विचार करते हुए मैंने पाया कि इस वर्ष ने एक समुदाय के रूप में हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली। निर्दोष लोगों की जान लेने वाले बोंडाई हमले की दुखद घटना ने हमें याद दिलाया कि जीवन कितना अनमोल और क्षणभंगुर है। फिर भी उस अंधकार में हमने मानवता का सर्वश्रेष्ठ रूप देखा। 2026 के लिए मेरी कामना सरल है। हम दीवारें नहीं पुल बनाना जारी रखें। हम विभाजन के बजाय एकता को चुनकर लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्हें हमने खो दिया। और हमारा प्राचीन उपदेश वसुदेव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करें। सभी को 2026 में शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं।
दिस इज हार्दिक केतानी फ्रॉम मेलबर्न। आई विश एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। सभी का साल बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हो, सभी के लिए तरक्की, ज्यादातर सभी की हेल्थ अच्छी रहे और सबको वो करने का जो भी मन है, जो भी रिजोल्यूशन है, जो नहीं कर पाए लोग वो करने की पूरी इच्छा से और मन से हो। और इस टाइम पे जो देश में हेट्रेड फैलाई जा रही है वो ना हो, सभी के लिए पॉजिटिव वातावरण हो और सबके लिए समान भाव हो, उसी पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से टू एवरीवन।
नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गुहा न्यूकासल से। SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए खुशियाँ और अच्छी सेहत लेकर आए।
मैं पराग मोदी आपके सभी लिसनर्स को और आपको और आपकी SBS टीम को नए साल का हार्दिक मुबारक। और हम यही चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और सब खुश रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।
मैं मेलबर्न में सुबह थॉमस, गुजरे साल की मीठी यादें संग ले चलो, नया साल खुशियों से भर जाए, दुआ मांगो। बस बीते साल की यादों को साथ लेकर नए साल में नई उम्मीदों और अरमानों को के साथ आगे बढ़े, खुश रहे, स्वस्थ रहे, दूसरों को खुशियाँ दें, दूसरों को मुस्कुराहट दें। नए साल की बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरी ओर से बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशा है सुख समृद्धि और स्वास्थ्य और सफलता के साथ ये नया वर्ष फिर बहुत कुछ लाएगा और हम सब लोगों के झोली में कुछ खुशियां डालेगा। पिछले वर्ष में बहुत कुछ अच्छा हुआ, खेल हो, पर्यावरण हो, महंगाई हो, उस पर हम लोगों ने काफी अच्छे कार्य किए हैं, पर कुछ बुरे भी अनुभव रहते हैं। तात्पर्य ये है कि हम बीते वर्षों से जो भी हुआ, जो हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, उससे हम सीख ले। मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर इस नव वर्ष में हम आप सब लोगों को, हमको सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाए और हम सभी पूरे वर्ष भर प्रफुल्लित रहे, हम सबके सपने जो है वो साकार हो। तो दो पंक्तियां नव वर्ष के आगमन पर कविता की कि नया वर्ष आए खुशी भर के लाए, सौहार्द खुशियों के दीपक जलाए, न बीते बुरे दिन फिर याद आए, तुम खिलखिलाओ हम खिलखिलाए, नया वर्ष आओ मिलकर मनाए। और यही शुभकामनाएं मेरी ओर से डॉक्टर सुभाष शर्मा मेलबर्न की तरफ से।
ये थे हमारे कुछ श्रोता जिन्होंने ये शुभकामनाएं भेजी। आप सभी को पूरी हिंदी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी की कामना रही कि नव वर्ष में सकारात्मक सोच, विश्व बंधुत्व की भावना यानी सामाजिक सौहार्द बनाए रखकर और विश्वास के साथ इस वर्ष को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और जैसा कि हमारे श्रोता डॉक्टर नीरज जी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है ताकि जीवन में शांति, सफलता और संतुलन बना रहे। हमने देखा कि प्राकृतिक आपदाओं और थोपी गई भयंकर घटनाओं के बीच जो जुड़ाव मानवता का स्वरूप देखने को मिला, बस कामना यही है कि हमारे विचार शुद्ध रहें और हम सब एक दूसरे के कल्याण के लिए तत्पर रहें। देखिए, अब शुरुआत तो अपने घर से ही होती है ना, तो बस नव वर्ष पर इसी संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ें, अपने अपने लिए गए संकल्पों की तरफ समर्पित भी रहें। आप सब अपना, परिवार और मित्रों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़े भी रहें और अपने संदेश भी भेजते रहिएगा। और हाँ, आज आए आपके सभी संदेशों के बारे में कल यानी शुक्रवार के कार्यक्रम में बताती हूँ, यानी उम्मीद कर रही हूँ कि आपका साथ कल भी हमारे साथ रहेगा। और कल आपको ले चलूंगी एक खूबसूरत सी जगह पर भी, दर्शनीय स्थलों की श्रृंखला में। आशा कर रही हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अनीता बरार का नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।